नमस्कार भारत, आज है 28 मई दिन रविवार। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। G7 देशों की बैठक में जलवायु परिवर्तन पर नहीं बनी सहमति। ट्रंप बिना कुछ बोले निकल गए। जर्मन चांसलर ने कहा, मुश्किल रही वार्ता।
Dritter Punkt und sehr schwierig, um nicht zu sagen sehr unzufriedenstellend, ist die gesamte Diskussion.
श्रीनगर में हिज्ब कमांडर की मौत के बाद तनाव, अलगाववादियों ने बुलाया बंद। सहारनपुर की स्थिति की भी होगी चर्चा और रिपोर्ट। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कितना कामयाब रहा मेक इन इंडिया का नारा?
इनकी जो सरकार की वो जो मॉडल है, ज्यादा बोलना, काम कम करना।
होगी पाकिस्तान से छपे उर्दू अखबारों की साप्ताहिक समीक्षा भी, पर पहले BBC समाचार।
BBC समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा है कि पेरिस संधि पर वो फैसला अगले हफ्ते करेंगे। इस संधि को लेकर G7 सम्मेलन में 6 देश एक तरफ थे, जबकि अमरीका अलग थलग था। सम्मेलन के अंत तक सिर्फ अमरीका की वजह से इसे लेकर सहमति ना बन पाने की निराशा बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के चेहरे पर साफ नजर आई। सिसली में हुए 2 दिवसीय G7 सम्मेलन के से निकलने के बाद अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिगोनेला में अमरीकी एयरबेस पर सेना को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बैठक में उन्होंने एक बड़ा समझौता किया है। ट्रंप ने कहा,
I attended the G7 right here in Sicily and made great progress toward
मैं यहीं सिसली में G7 में सम्मिलित हुआ और एक बेहद अहम उद्देश्य को पाने की ओर आगे बढ़ा। मैंने आर्थिक विकास और निष्पक्ष व्यापार और अच्छी नौकरियों और यहां तक कि अच्छे वेतन वाली मध्यम वर्गीय नौकरियों के समर्थन के लिए अपना दृष्टिकोण रखा। मैंने अपने नागरिकों की रक्षा के लिए आतंकवाद, आप्रवास, प्रवास दोनों मामलों में अधिक से अधिक सुरक्षा और सहयोग की बात कही। ये थे डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। इराकी सेना का कहना है कि पश्चिमी मोसुल में इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों के बचे हुए 3 ठिकानों पर किए गए हमलों में उन्हें सफलता मिली है। सुरक्षा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मोसुल में तंग गलियारों वाले IS के आखिरी गढ़ को छोड़कर इराकी बलों ने पुराने शहर के किनारों के 3 जिलों में रणनीतिक तौर पर बढ़त बना ली है। TV पर इराकी सेना को इनमें से एक इलाके अल जिंजली में लड़ते हुए दिखाया गया था। एक इराकी सैन्य कमांडर ने बताया कि अल जिंजली में लड़ाई जारी है। सैन्य कमांडर महदी अब्बास ने बताया, आज सुबह 4 बजे रैपिड रिस्पांस डिवीजन की सेना ने अल जिंजीली को अपने नियंत्रण में लेने के लिए अभियान शुरू किया था। हमने कई दहशत आतंकियों को मार गिराया और कई कार बमों में धमाके किए। ये थे महदी अब्बास के शब्द। इस्लामिक स्टेट गुट ने शुक्रवार को मिस्र में ईसाइयों पर हुए जानलेवा हमले की जिम्मेदारी ली है। इस हमले में 28 लोग मारे गए थे। यह हमला कॉप्टिक ईसाइयों को ले जा रही एक बस पर नकाबपोश बंदूकधारियों ने किया था। शनिवार को कई लोग पीड़ितों के शोक में शामिल हुए। IS ने दावा किया है कि पिछले कुछ महीनों में मिस्र में ईसाइयों पर हुए हमलों के लिए वो ही जिम्मेदार हैं। रूस की पुलिस को एक अनोखे मामले में माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल रूस की पुलिस का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो एक 10 साल के बच्चे को जबरदस्ती गाड़ी में ले जा रही है। इससे पहले इस वीडियो में ये लड़का मॉस्को के फुटपाथ पर शेक्सपियर के नाटक हैमलेट की लाइन टू बी और नॉट टू बी बोलता हुआ नजर आ रहा था। पुलिस का कहना है कि वो भीख मांग रहा था और हमने उसके पिता पर अभिभावक के तौर पर अपने कर्तव्य पूरे न करने के लिए जुर्माना लगाया है। मॉस्को पुलिस का कहना है कि वो अब इस मामले की जांच करेगी। शनिवार को इंडोनेशिया में गांजे की तस्करी के आरोप में सजा भुगत रही पूर्व ब्यूटी थेरेपिस्ट ऑस्ट्रेलिया की शेपल कॉर्बी को 9 साल जेल की सजा और 3 साल पेरोल के बाद बाली से ऑस्ट्रेलिया प्रत्यर्पित कर दिया गया। शेपल को बाली एयरपोर्ट से 2004 में गिरफ्तार किया गया था। उनके सामान में से 4 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया था। 2005 में उन्हें 20 साल की सजा सुनाई गई थी। शेपल कॉर्बी इस मामले में लगातार खुद को बेकसूर बताती रहीं। 2007 में शेपल कॉर्बी पर एक डॉक्यूमेंट्री गांजा क्वीन भी बनी थी, जिसके निर्माता जेनिन हॉस्किन थे। तभी से उन्हें गांजा क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव और मैं हूं अपूर्व कृष्ण। दुनिया के 7 अमीर देशों के संगठन G7 के नेताओं के बीच जलवायु परिवर्तन पर एक साझा बयान जारी करने को लेकर सहमति नहीं हो पाई है। समूह के 7 में से 6 देशों ने पेरिस संधि का पालन करने को लेकर अपना संकल्प दोहराया मगर अमरीका ने इससे इनकार कर दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इस बारे में अगले सप्ताह फैसला करेंगे। और ब्यौरे के साथ तृप्ति श्रीवास्तव।
अपने पहले विदेश दौरे पर निकले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार G7 देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। सम्मेलन इटली के सिसिली शहर में शुरू हुआ। वहां जलवायु परिवर्तन पर एक साझा घोषणा पत्र जारी करने की कोशिश की जा रही थी कि सभी देश 2015 में पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर हुई संधि को लागू करने को लेकर अपनी वचनबद्धता दोहराएं। मगर इस पर सहमति नहीं बन पाई। G7 के 6 देश तो तैयार थे मगर अमरीका अलग पड़ गया। मतभेद इतने गहरे थे कि राष्ट्रपति ट्रंप बिना संवाददाता सम्मेलन किए निकल गए और बाद में ट्विटर पर लिखा कि वो पेरिस संधि के बारे में अगले सप्ताह फैसला करेंगे। ट्रंप ने एक वक्त में ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे को धोखा बताते हुए इस संकट को ही रफा दफा कर दिया था। वो पेरिस संधि से अलग हटने की भी धमकी दे चुके हैं। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने अमरीका के रुख की वजह से सिसली सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर हुई बहस पर निराशा प्रकट की।
Dritter Punkt und sehr schwierig, um nicht zu sagen sehr unzufriedenstellend, ist die gesamte Diskussion.
जलवायु पर हुई पूरी चर्चा बहुत मुश्किल थी, बहुत असंतोषजनक। हमारे सामने ऐसी स्थिति थी, 6 सदस्य और अगर आप EU को गिन लें तो 7 सदस्य एक ओर थे और दूसरी तरफ एक। अभी तक इस बात का कोई संकेत नहीं है कि अमरीका पेरिस संधि को मानेगा या नहीं। एंगेला मर्केल के शब्द। सम्मेलन की समाप्ति पर फ्रांस के नए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि 6 सदस्य राष्ट्रपति ट्रंप को राजी करवा लेंगे मगर वो नहीं चाहते थे कि इस मुद्दे को लेकर गुट ही टूट जाए।
Je ne veux pas moi rentrer dans une logique d'un 6+1 parce que on irait dans le sens d'une fragmentation des démocraties.
मैं इस 6 एक तरफ और एक दूसरी तरफ के बहस में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि तब हम लोकतांत्रिक और बड़ी आर्थिक शक्तियों के टूटने की बात करने लगेंगे जो मुझे नहीं लगता कि हमारे हित में होगा। मतभेद होते रहते हैं, इस बार वो जलवायु को लेकर हुए और मुझे लगता है कि हम इसे दूर करने की कोशिश करते रहेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के शब्द। वैसे शिखर सम्मेलन के लिए सिसली पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेश ने बीबीसी से कहा कि ट्रंप का फैसला जो भी हो पेरिस संधि बरकरार रहेगी।
The agreement doesn't collapse if a country leaves the agreement. We don't know if the United States will leave the agreement or not.
अगर कोई देश अलग हो जाए तो भी संधि नहीं खत्म हो जाती। हमें नहीं पता कि अमरीका साथ रहेगा कि नहीं मगर हम चाहेंगे कि अमरीका भी इस मुद्दे पर साथ हो क्योंकि ये सबके लिए जरूरी मुद्दा है। लेकिन अगर एक देश अलग हो जाता है तो बाकी देशों के लिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि वो एकजुट हों और ये सुनिश्चित करें कि पेरिस संधि पर प्रगति हो। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेश के शब्द। हालांकि सिसली में मौजूद बीबीसी संवाददाता जेम्स रेनॉल्ड्स का कहना है कि जलवायु संकट के मुद्दे पर G7 में दरार साफ दिखाई दे रही है। एक और है G6 यानी कनाडा, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली और दूसरी तरफ है G1 यानी अमरीका। संवाददाता के अनुसार सम्मेलन के अंत में इटली के प्रधानमंत्री सहमति नहीं हो पाने पर अपनी निराशा नहीं छिपा पा रहे थे क्योंकि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर G1 अकेला ही अलग जा रहा है।
जलवायु परिवर्तन पर G7 शिखर सम्मेलन में मतभेद।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
भारत प्रशासित कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर सबजार अहमद बट समेत 2 चरमपंथियों की मौत के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। घाटी के कई हिस्सों में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए हैं। अलगाववादी संगठनों ने आज रविवार से 2 दिन का बंद बुलाया है। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने श्रीनगर समेत घाटी के कई हिस्सों में कई प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सबजार अहमद भट्ट की शनिवार को मौत के बाद कश्मीर घाटी एक बार फिर सुलगने लगी है। सबजार अहमद भट्ट को त्राल के रटसुना इलाके में सुरक्षा बलों के साथ अपने एक साथी समेत मुठभेड़ में मारा गया। کشمیر کے آئی جی پی منیر احمد خان نے اس حوالے سے بتایا.
ہماری پارٹی پولیس کی پارٹی اور آرمی کی پارٹی پیٹرولنگ کر رہی تھی, رات کو اس کے اوپر انٹرسٹ نے فائر کیا, اینڈ آفٹر فائرنگ آن دی پارٹی وہ گھر کے اندر گھس گئے.
جی سر. جی سر.
اس میں ابھی تک دو ملٹنٹ مرے ہیں.
الگ وادیوں نے سبزار احمد اور نینترن ریکھا پر شنیوار کو سینا کے ساتھ جھڑپ میں 6 چرم پنتھیوں کی موت کے خلاف آج سے 2 دنوں کا کشمیر بند بلایا ہے. اس بیچ سرکار نے آج کشمیر کے کئی ضلعوں میں کرفیو جیسے پرتیبندھ لگانے کا اعلان کیا ہے. راجدھانی سری نگر کے کئی علاقوں میں بھی آج کرفیو رہے گا. سری نگر کے ڈپٹی کمشنر فاروق احمد لون نے بی بی سی کو بتایا. شنیوار کو بٹ کی موت کے بعد کشمیر کے کئی علاقوں میں پردرشنوں کے علاوہ سرکشا بلوں اور یواؤں کے بیچ جھڑپیں ہوئی ہیں, جن جھڑپوں میں 1 درجن سے بھی زیادہ یوا گھائل ہو گئے ہیں. تاہم پولیس نے بتایا ہے کہ ان جھڑپوں میں ان کے 25 سرکشا کرمی بھی گھائل ہو گئے ہیں. ترال میں پردرشنوں کے دوران ایک یوا کی بھی گولی لگنے سے موت ہو گئی ہے. تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ ناگرک کی موت کراس فائرنگ میں ہوئی ہے. کشمیر میں تناؤ کو دیکھ سرکار نے موبائل انٹرنیٹ سیواؤں اور پری پیڈ موبائل سیوا پر بھی پرتیبندھ لگا دیا ہے. سبزار احمد بٹ بیتے سال مارے گئے حزب المجاہدین کمانڈر برہان وانی کے بہت ہی قریبی ساتھی مانے جاتے تھے. برہان وانی کی موت کے بعد بٹ کو برہان وانی کی جگہ پر لایا گیا تھا. برہان وانی کی موت کے بعد بیتے سال مہینوں تک چلنے والے بھارت ورودھی پردرشنوں میں قریب 90 پردرشنکاری مارے گئے تھے. 50 سے بھی زیادہ دنوں تک سرکار نے کشمیر کو کرفیو کے حوالے کیا تھا. کشمیر میں بیتے 10 مہینوں سے حالات بہت ہی تناؤ پون ہیں. کشمیر کے اسکول اور کالج چھاتروں اور چھاترائیں بھی سڑکوں پر آ کر پردرشن کر رہی ہے. سبزار احمد بٹ کی موت کے بعد سرکار کے لیے ابھی سب سے بڑی چنوتی کشمیر میں حالات کو سامان رکھنے کی ہے. ماجد جہانگیر, بی بی سی سری نگر.
اتر پردیش کے سہارنپور ضلع میں بیتے دنوں ہوئی ہنسا کے بعد تناؤ کی استھتی بنی ہوئی ہے. کانگریس اپادھیکش راہل گاندھی کل سہارنپور پہنچے. انہوں نے ٹویٹر پر جانکاری دی کہ پرشاسن نے انہیں یو پی بارڈر پر روکنے کی کوشش کی, لیکن وہ پیدل ہی سہارنپور کی شاہجہاں پور چوکی پہنچے اور پیڑت پریواروں سے ملے. بی بی سی سنواداتا زبیر احمد بھی کل سہارنپور میں تھے. ہمارے سہیوگی واتسلیہ رائے نے ان سے پوچھا کہ آخر پرشاسن نے راہل گاندھی کو پربھاوت علاقے میں جانے کی اجازت کیوں نہیں دی.
23 مئی کو جب مایاوتی آئی تھیں شہر میں, تو اس کے تھوڑا پہلے وہاں پر ہنسا کی گھٹنا گھٹی تھی, جس کے کارن ایک ویکتی کی جان گئی تھی اور کئی لوگ گھائل ہو گئے تھے. پرشاسن اس دفعہ جو ہے وہ بالکل سترک تھا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی نیتا یہاں آئے گا تو ابھی معاملہ بہت نازک ہے, کوئی بھی ٹرن لے سکتا ہے. جو حالات ہیں اس وقت, تو بہتر یہ ہے کہ نیتا جو دلی سے یا لکھنؤ سے آنا چاہتے ہیں فی الحال پرہیز کریں آنے سے. کل ہم نے پرشاسن سے بات بھی کی تھی, وہاں کے جو سینئر آئی جی ہیں پولیس کے امیتابھ یش, میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی راہل گاندھی آنے والے ہیں تو بندوبست کیا آپ لوگوں نے, تو انہوں نے کہا بندوبست تو ایسے بھی ہے شہر میں, لیکن کوئی نیتا کسی کو ہم الاؤ نہیں کریں گے, کیونکہ مایاوتی کے یہاں آنے کے بعد جو ہنسا ہوئی ہے اس سے انہوں نے ایک سبق سیکھا ہے. انہوں نے یہ ایک طرح سے سویکار کیا کہ پرشاسن پوری طرح سے جوجھنے کے لیے تیار نہیں تھا, وہ ایک دم سے اچانک سے یہ ہوا, جس کے کارن مکھیہ منتری نے 2-3 لوگوں کو وہاں تبادلہ بھی کیا, وہاں سے ایم ڈی ایم اور ایس ایس پی کو. اور اس کے بعد جو وہاں پر وہاں کے جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایم پی ہیں راگھو لکھن پال شرما, ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس وقت سیاسی روٹی سیکنے لوگ آ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے, ان کو اس سمے سہارنپور آنے سے گریز کرنا چاہیے.
لیکن راہل گاندھی وہاں گئے, کچھ لوگوں سے انہوں نے ملاقات بھی کی, اور انہوں نے کیا کہا یہ ہم سنا دیتے ہیں.
آج کے ہندوستان میں غریب ویکتی کمزور ویکتی کے لیے جگہ نہیں, دلتوں کو دبایا جا رہا ہے, اور یہ صرف سہارنپور میں نہیں پورے ہندوستان میں جایا جا رہا ہے.
یہ تھے راہل گاندھی. زبیر صاحب, جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا بھی کہنا ہے کہ یہاں سیاست نہیں ہونی چاہیے, لیکن آروپ تو بھارتیہ جنتا پارٹی پر بھی لگ رہے ہیں.
بالکل, میں ابھی وہاں پر 2-3 دن رہ کر آیا ہوں, اس میں لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو سرکار ہے, راجیہ سرکار, وہ بالکل بری طرح سے پچھلے 1 مہینے میں ناکام رہی ہے استھتی کو سامان کرنے میں. وپکش کا یہ کہنا ہے کہ 5 تاریخ کو وہاں ہنسا ہوئی, 9 مئی کو ہوئی, اور پھر 23 مئی کو. تو کیا جب 5 مئی کو ہنسا ہوئی تھی, جب دلتوں کے گھروں کو جلایا گیا تھا, اس کے بعد پرشاسن کو سترک نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا راجیہ سرکار ایک طرح سے تیاری اس کی ہونی چاہیے تھی کلیئر انسٹرکشنز ہونے چاہیے تھے جو زمین پہ جو افسر ہیں وہ انہوں نے نہیں کیا. یہ ایک طرح سے بھارتیہ جنتا پارٹی سرکار کی بہت بڑی ناکامی ہے. لیکن جب میں نے یہ بات رکھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے نیتاؤں کے سامنے اور جو ایم پی صاحب شرما صاحب کا جو ہم نے نام لیا ان کے سامنے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اصل میں جو ساری گھٹنائیں گھٹی ہیں پچھلے ایک مہینے میں وہ دراصل بھارتیہ جنتا پارٹی کی نئی سرکار کو بدنام کرنے کی وپکش کی ایک سازش ہے.
آپ ابھی وہاں سے لوٹے ہیں, کیا استھتی سامانیہ ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے؟
دیکھیے اگر آپ باہر سے دلی سے لکھنؤ سے وہاں دورہ کر رہے ہیں آپ کو صاف دکھے گا کہ شہر میں جگہ جگہ پر پولیس تعینات ہے. ان گاؤں میں جائیں گے جہاں پر شبیر پور جیسے مثال کے طور پر وہاں پہ ہنسا ہوئی تھی, دلتوں کے گھر جلائے گئے تھے اور کچھ اونچ جاتی کے لوگوں کے بھی گھر جلائے گئے تھے, تو وہاں پر بہت بھاری سنکھیا میں آپ کو لوکل پولیس مل جائے گی, ریپڈ ایکشن فورس کے دستے مل جائیں گے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں کچھ حالات گڑبڑ تھے لیکن چونکہ پولیس کا بندوبست اتنا اچھا ہے اس وقت تو سامان ہوتی نظر آ رہی استھتی. لیکن جب لوگوں سے باتیں کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ من مٹاؤ دونوں سمودائے کے بیچ میں ہے. معاملہ اتنا نازک ہے کہ وہ ڈر رہے ہیں ایک دوسرے کے علاقے میں جانے سے اور اپنے ہی اپنے گھروں میں بیٹھے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب استھتی پوری طرح سے سامان ہو جائے تاکہ وہ اپنی جو نارمل زندگی اس کو شروع کر سکیں.
یہ تھے سہارنپور سے زبیر احمد جن سے بات کر رہے تھے ہمارے سہیوگی واتسلیہ رائے. اور اب سمے ہو چلا ہے آج کے اخباروں پر نظر ڈالنے کا. ترپتی شریواستو اسٹوڈیو میں اخباروں کے ساتھ ہیں. ترپتی, اخباروں میں سہارنپور کی بھی چرچا دکھائی دے رہی ہے.
ہاں بالکل, نو بھارت ٹائمس میں مجھے خبر دکھائی دے رہی ہے, جیسے کہ ابھی ہم اپنی رپورٹ میں بھی سن رہے تھے کہ راہل گاندھی کو سہارنپور میں نہیں جانے دیا تھا, لیکن اخبار لکھتا ہے کہ راہل گاندھی بھلے ہی سہارنپور نہیں گھس پائے لیکن وہ بارڈر پہ شاہجہاں پور بارڈر تک پہنچے اور ایک ڈھابے پر راہل پنچایت لگا کر بیٹھ گئے, وہیں پر شبیر پور کے ہنسا کے شکار ہوئے دلتوں سے ملے اور ان کا درد انہوں نے وہاں پہ جانا. نو بھارت ٹائمس کی خبر ہے. جی بالکل, نو بھارت ٹائمس کی خبر ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک خبر سارے انگریزی اخباروں اور ہندی اخباروں کے سبھی کے پہلے پنے پر جو خبر ہے وہ ہے کہ بھارت میں پہلی بار زیکا وائرس کے سنکرمن کے معاملے کی پشٹی ہوئی. ہندوستان ٹائمز نے لکھا ہے کہ وشو سواستھیہ سنگٹھن نے کہا ہے کہ گجرات کے احمد آباد میں زیکا سنکرمن کے 3 معاملوں کا پتہ چلا ہے, حالانکہ یہ پچھلے سال کے معاملے ہیں تینوں, اور تینوں ہی معاملے شہر کے باپو نگر علاقے کے ہیں.
زیکا اس کو لے کر پچھلے سال کافی حالات کافی گمبھیر ہو گئے تھے. کئی دیشوں میں جو بچوں کے نوجات بچوں کے سر بڑے ہو جاتے ہیں وہ خبریں آئی تھیں اور اس کے بعد ایمرجنسی لاگو ہوئی تھی, لیکن بھارت کا کبھی نام نہیں آیا تھا. تو یہ بڑی خبر ہے, پچھلے سال کے یہ معاملے ہیں شاید جن کی پشتی ابھی کی ہے.
جی جی. اور ایک بڑی دلچسپ سی خبر انڈین ایکسپریس نے اپنے پہلے پنے پر چھاپی ہے کہ کشی نگر کی ایک خبر ہے کہ وہاں پر یوگی آدتیہ ناتھ دورے کے لیے جانے والے تھے تو دلت مہیلاؤں کو ان کے دورے سے پہلے شیمپو اور صابن دیے گئے تھے تاکہ وہ اچھی طرح سے نہا کر ان کے سامنے آ سکیں. گروار کو ان کا دورہ تھا اور یہاں پہ بتایا کہ مہیلاؤں کو 2 لائف بوائے صابن اور شیمپو بانٹے گئے تھے. تو بڑی
کل بھی خبر ہمارے یہاں آئی تھی کہ وہ امت شاہ جب گئے تھے تب دلتوں کے یہاں کسی باہر کے جگہ سے کھانا منگوایا گیا تھا, تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے لگتا ہے.
بالکل. اور جن ستا کی خبر پہ میری نظر جا رہی ہے, اس میں لکھا ہے کہ جو شکروار کو کڈنی گروہ کے کا سامنے آیا تھا, گروہ کے معاملے کی جو جانچ چل رہی ہے اب وہ ایس آئی ٹی کو سونپا جانا لگ بھگ طے ہے. بیتے سال دلی کے اپولو اسپتال میں اس معاملے کو ایس آئی ٹی نے ہی انجام تک پہنچایا تھا. تو میں آپ کو ایک بار یاد دلا دوں, اپور جی کے ایم بی اے کے ایک چھاتر ہیں جے دیپ شرما نے جان پر کھیل کر اس گروہ کا بھنڈا پھوڑ کیا تھا. تو وہ ایک کافی اہم خبر ہے. دوسری ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ کافی خبر نیوز پیپر نے 2 لائن میں ہی لکھی لیکن اہم خبر ہے, وہ یہ ہے کہ سی بی ایس سی کے 12ویں کے نتیجے
آج آنے والے ہیں کی گھوشنا ہونے والی ہے.
اور اس بار بالکل موڈریشن پالیسی کو لاگو کرتے ہوئے 12ویں کا ریزلٹ آج آنے والا ہے. تو یہ ایک بہت
نظر رہے گی.
بالکل بالکل.
تو بہت بہت دھنیواد ترپتی. اور اب رویوار ہے تو ساتھ ساتھ پاکستان میں پچھلے ہفتے اردو اخباروں میں کیا کچھ چھپا, کیا کچھ خبریں اہم رہیں, ان پر بھی نظر ڈالتے ہیں. انہیں کھنگالا ہے اقبال احمد نے.
سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارت پاک نینترن ریکھا پر ہونے والی فائرنگ کی. اخبار دنیا کے مطابق بھارتی دھمکیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستانی وایو سینا نے اپنے سبھی فارورڈ ایئر بیس کو آپریشنل کر دیے ہیں. पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख सुहेल अमान ने शियाचिन में लड़ाकू विमान भी उड़ाए। अखबार के मुताबिक सेना प्रमुख ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पाकिस्तानी कौम को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेना प्रमुख के बयान का हवाला देते हुए अखबार लिखता है, दुश्मन के किसी भी हमले पर पाक वायुसेना भरपूर तरीके से ऐसा जवाब देगी कि उसे आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सऊदी अरब दौरे की खबर भी सारे अखबारों की सुर्खियां बटोरती रहीं। नवाए वक्त ने ट्रंप दौरे की शायद सबसे मजेदार हेडलाइन लगाई है। अखबार लिखता है, नवाज शरीफ 2.5 घंटे तैयारी करते रहे लेकिन बोलने का मौका नहीं दिया गया। अखबार के मुताबिक ट्रंप जब सऊदी अरब में थे तो राजधानी रियाद में 50 से ज्यादा इस्लामी देशों के शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हुई जिसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी शामिल थे। अखबार के अनुसार नवाज शरीफ ने अपने विशेष विमान में अपने सलाहकारों के साथ करीब 2.5 घंटे तक स्पीच की तैयारी की थी जिसे वो उस बैठक में बोलने वाले थे लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। अखबार के मुताबिक ये परमाणु शक्ति संपन्न इकलौते इस्लामी देश पाकिस्तान का अपमान है। अखबार के अनुसार ट्रंप ने भारत का बचाव करके पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़का है। पाकिस्तान से लौटकर आने वाली भारतीय महिला उज्मा भारतीय मीडिया में हर जगह सुर्खियों में रहीं लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में उनको कोई खास जगह नहीं मिली। अखबार नवाए वक्त ने सुर्खी लगाई है, उज्मा ने भारत पहुंचते ही जहर उगल दिया। अखबार लिखता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत का दोहरा रवैया सामने आ गया। अखबार के मुताबिक सुषमा स्वराज ने तो उज्मा के सही सलामत भारत लौटने पर पाकिस्तानी सरकार वहां की अदालत और वकीलों का शुक्रिया अदा किया लेकिन उज्मा के जरिए वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवाती रहीं।
पाकिस्तान से छपे उर्दू अखबारों की साप्ताहिक समीक्षा कर रहे थे इकबाल अहमद। और अब मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर खास रिपोर्टों की श्रृंखला की अगली कड़ी। मोदी सरकार का मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर खास जोर रहा है। ये अभियान जोर शोर के साथ शुरू हुआ था, जबरदस्त प्रचार भी किया गया था लेकिन हकीकत में हासिल क्या हुआ, जानते हैं बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली की इस रिपोर्ट में।
वंदे मातरम की धुन, उस पर चलता हुआ मेक इन इंडिया का इस्पात का शेर, हॉल में बैठे विदेशी मेहमान और नरेंद्र मोदी का भाषण।
वी आर कमिटेड टू मेक इन इंडिया एन इजी प्लेस टू डू बिजनेस।
कितना सफल रहा है भारत को एक ऐसे केंद्र के तौर पर उभारने का सपना जहां कंपनियां माल तैयार करें और वो भारत से दूसरे मुल्कों को सप्लाई हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक आंकड़े के मुताबिक निर्माण के क्षेत्र में विदेशी निवेश पिछले साल तक उस स्तर को नहीं पार कर पाया था जहां वो साल 2011 और 12 में हुआ करता था। अर्थशास्त्री सुजान हाजरा कहते हैं कि वैश्विक स्तर पर निर्माण क्षेत्र में ओवर कैपेसिटी है, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, साथ ही 2007 और 8 के वैश्विक आर्थिक मंदी का असर अभी पूरी तरह से गया नहीं।
कुछ इंटरनल भी इश्यूज है, पिछले कुछ सालों से बैंक का जो क्रेडिट ग्रोथ है काफी लो रहा है। 2006 में 75% ऑफ इंडस्ट्रियल क्रेडिट यूज्ड टू कम फ्रॉम बैंक, आज का दिन में ये 25-30% हो गया है। और बैंक का क्रेडिट ग्रोथ लो होने का वजह से वो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री में इम्पैक्ट होता है। दूसरा बात यह है कि जो कंडीशंस फॉर डूइंग बिजनेस होता है, कितना जल्दी आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, कितना जल्दी आप गवर्नमेंट का साथ लाइसेंस रिक्वायरमेंट और जो परमिशन रिक्वायरमेंट होता है वो कितना जल्दी काम करता है, इसमें ज्यादा हद तक जो चीजें है वो स्टेट गवर्नमेंट का अंडर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जबकि बहुत सारे लिबरलाइजेशन किए हैं बट स्टेट लेवल में ये सब रिफॉर्म हर स्टेट में नहीं हुआ है।
क्या रेटिंग के प्रमुख अर्थशास्त्री मदन सबनवीस कहते हैं मेक इन इंडिया एक योजना है जिसकी प्रगति जारी है। सबनवीस कहते हैं उद्योग क्षेत्र में क्षमता का महज 70% इस्तेमाल हो रहा है जबकि ये कम से कम 85% तक होना चाहिए और जब पहले से ही मौजूद इंडस्ट्री की क्षमता का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है तो उद्यमी के लिए नया उद्योग लगाना फायदे का सौदा नहीं।
The consumers have not been spending in the last few years, primarily on account of high inflation, income not rising. So when we were spending more money,
महंगाई की वजह से कंज्यूमर पैसे खर्च करने को तैयार नहीं है। जब वो खाने पीने की चीजों पर ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं तो जाहिर है दूसरी चीजों पर खर्च करने को उनके पास कम पैसे बचते हैं। इसी वजह से बाजार में प्रोडक्ट्स की मांग कम रही है। सरकार बजट घाटे को कम करने के चक्कर में मूलभूत ढांचे पर उतना खर्च नहीं कर रही जितना किया जा सकता है। अगर सरकार इस खर्च को बढ़ाती तो निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकता था। अर्थशास्त्री मदन सबनवीश के शब्द। पूर्व वित्त मंत्री के आर्थिक सलाहकार और जाने माने अर्थशास्त्री मोहन गुरुस्वामी का भी मानना है कि मोदी सरकार खुद ही इस योजना को लेकर सीरियस नहीं। गुरुस्वामी 36 रफेल लड़ाकू विमानों के फ्रांस के साथ हुए सौदे का हवाला देते हैं और कहते हैं कि सरकार ने सौदे में कंपनी के कुछ काम को भारत में लाने की शर्त क्यों नहीं रखी जैसा कि पहले के सौदों में होता रहा था। नोटबंदी ने भी मोहन गुरुस्वामी के मुताबिक निवेश पर असर डाला है।
डिमोनेटाइजेशन पॉलिटिकली सही होगा, अगर दुनिया में सारे लोग गलती इतनी बेवकूफी अगर कर सकती है कोई सरकार, तो हम उस सरकार में जाके कैसे उनके साथ काम करेंगे। कोई बिना सोचे जाने कोई 86% करेंसी निकाल दिया मार्केट से और नए नोट भी तैयार नहीं किया। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आप वोट हासिल कर लेंगे, कहेंगे कि हम अमीरों पे मार किया, तो अलग बात है, मगर दुनिया में तो कोई और समझ निकलती है ना। इस पे
सत्ता के केंद्रीकरण और सक्षम कामगारों की कमी को भी भारत में कम निवेश होने की वजह बताया जा रहा है। तो क्या मेक इन इंडिया पूरी तरह से नाकाम रहा है? सबनवीस कहते हैं,
इन द पास्ट वी हैड इश्यूज ऑफ एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज़ ऑफ द वेरियस,
पहले प्राकृतिक संपदाओं के आवंटन में इंडस्ट्री को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सरकार ने कोयला, 3G और दूसरे आवंटनों के जरिए इसको दूर किया है, साथ ही पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट्स को भी हरी झंडी मिल गई है। ये थे अर्थशास्त्री सबनवीस के शब्द। मगर तीनों अर्थशास्त्री मेक इन इंडिया के बारे में एक बात पर इत्तफाक रखते हैं।
एक तो ये इंटेंशन है,
फिर से वेदर मेक इन इंडिया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गवर्नमेंट हैज बीन सक्सेसफुल इन डूइंग व्हाटएवर कैन बी डन, एंड द आंसर इज डेफिनेटली नो।
इनकी जो सरकार की वो जो मॉडल है, ज्यादा बोलना काम कम करना।
फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। पिछले दिनों IPL 10 से निपटने के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की निगाहें अगले महीने 1 तारीख से इंग्लैंड में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी पर जम गई है। वैसे तो भारत अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 4 जून को खेलेगा, लेकिन उससे पहले भारत अपना पहला अभ्यास मैच आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। भारत के कप्तान विराट कोहली इस मैच का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खुद उनका अपना बल्ला IPL के दौरान खामोश रहा। इतना ही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा भी कुछ ही मैचों में अपना जलवा दिखा सके। आर अश्विन तो पूरे IPL से दूर रहे। ऐसे में विराट कोहली केन विलियमसन की कप्तानी में खेलने वाली न्यूजीलैंड की टीम से अभ्यास मैच खेलकर न सिर्फ अपनी खोई फॉर्म हासिल करना चाहेंगे, वरन अपने गेंदबाजों को प्रेरित कर मैच जीतकर टीम का मनोबल भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। न्यूजीलैंड के पास मिचेल मैकलंगन, टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट जैसे तेज गेंदबाज हैं, जिनके खिलाफ अगर भारतीय बल्लेबाज खुलकर रन बनाने में कामयाब हुए तो टीम पर भरोसा भी जमेगा। लिहाजा ये अभ्यास मैच भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं आज से साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन शुरू होने जा रहा है, जहां पहले ही दिन पुरुष एकल वर्ग में 7वीं वरीयता हासिल ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम का सामना ऑस्ट्रेलिया के बर्नार्ड टॉमिस से होगा। इसके अलावा 11वीं वरीयता हासिल ग्रिगोर दिमित्रोव का सामना फ्रांस के स्टीफने रॉबर्ट से, जबकि महिला एकल वर्ग में 6ठी वरीयता हासिल स्लोवाकिया की डोमिनिका चिपुलकोवा का सामना स्पेन की लारा अरुआ बारेना से और 10वीं वरीयता हासिल अमेरिका की वीनस विलियम्स का सामना चीन की वांग टियांग से होगा। लेकिन सबकी नजरें रहेंगी शीर्ष वरीयता हासिल जर्मनी की एंजेलिक कर्बर और रूस की एकातेरिना माकारोवा के बीच होने वाले मुकाबले पर।
और अब मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा है कि पेरिस संधि पर वो फैसला अगले हफ्ते करेंगे। इस संधि को लेकर G7 सम्मेलन में 6 देश एक तरफ थे, जबकि अमरीका अलग थलग था। इराकी सेना का कहना है कि पश्चिमी मोसुल में इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों के बचे हुए 3 ठिकानों पर किए गए हमलों में उन्हें सफलता मिली है। इस्लामिक स्टेट गुट ने शुक्रवार को मिस्र में ईसाइयों पर हुए जानलेवा हमले की जिम्मेदारी ली है। इस हमले में 28 लोग मारे गए थे। रूस की पुलिस ने एक अनोखे मामले में माफी मांगी है, जिसमें एक 10 साल के बच्चे को वो जबरदस्ती पकड़कर ले जा रही थी। बीबीसी समाचार।
तो मुख्य समाचारों के साथ ही ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होंगी। तब तक आपके साथ हैं हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। आज कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया राजेश चौहान ने। अपूर्व कृष्ण को अनुमति दें। नमस्कार।